एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम विश्व साहित्य की एक ऐसी जबरदस्त कृति पर बात करने वाले हैं जिसने कहना चाहिए कि लैटिन अमेरिकी साहित्य को एक नई पहचान दी। मैं बात कर रही हूँ इसाबेल आइंदे के पहले उपन्यास ला कासा दे लोस एस्पिरिटुस, यानी द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स, हिंदी में कहें तो आत्माओं का घर।
हाँ बिल्कुल, आइंदे अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। 1942 में पेरू में जन्म हुआ पर पली बढ़ी चिली में। उनकी जिंदगी का चिली के इतिहास से, खासकर वहाँ की उथल पुथल से गहरा नाता रहा है।
हाँ, वो साल्वाडोर आयंदे की भतीजी थी जो चिली के राष्ट्रपति थे।
जी हाँ, और 1973 के तख्ता पलट के बाद, जिसमें साल्वाडोर आयंदे की मृत्यु हुई, इसाबेल को देश छोड़ना पड़ा। वेनेजुएला में निर्वासन में रहीं। शायद वही अनुभव उनके लेखन में इतनी शिद्दत भरते हैं।
सही कहा, उनकी लेखन शैली, उसे पोस्ट बूम कहते हैं ना।
उनका संघर्ष उनकी ताकत।
बिल्कुल, परिवार, यादें, सामाजिक न्याय और इन सबके बीच प्यार, ये सब उनके उपन्यासों में बार बार आते हैं। आत्माओं का घर 1982 में आया और आते ही छा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
और मजे की बात ये है
जी
कि इसकी शुरुआत एक चिट्ठी के तौर पर हुई थी।
अच्छा।
हाँ, वो अपने 99 साल के दादाजी को लिख रही थी जो बीमार थे। शायद यादों को सहेजने का एक तरीका था ये।
वाह, और ये जादुई यथार्थवाद का एक बेहतरीन नमूना है। मतलब आत्माएं घूम रही हैं, लोग भविष्य देख रहे हैं,
और ये सब बिल्कुल आम बात लगती है पढ़ते हुए, कोई अजूबा नहीं लगता।
हाँ हाँ, अक्सर इसकी तुलना गार्सिया मार्केज के सॉलिट्यूड से होती है, पर आयंदे का जो नारीवादी नजरिया है वो इसे एकदम अलग बनाता है।
बिल्कुल।
तो आज हम इसी बहुपीढ़ी वाली कहानी, इसके किरदारों और इसके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ जी, तो ये कहानी है ट्रूबा परिवार की, एक अनाम लैटिन अमेरिकी देश में, जो पढ़ते हुए लगता है कि चिली ही है। करीब 100 साल की कहानी है ये। कहानी के दो मुख्य स्तंभ हैं। एक तरफ एस्तेबान ट्रूबा, गुस्सेल, दबंग, पुराने ख्यालों का जमींदार।
हाँ, वो टिपिकल कुलपति टाइप।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी क्लारा डेल वैले, शांत, रहस्यमयी, जिसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, आत्माओं से बातें करना, भविष्य देख लेना।
और ये जादू सिर्फ सजावट नहीं है, कहानी का हिस्सा है।
हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा, जैसे ये सब होता ही है।
और यहीं से कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो उभरता है, दो स्तरों पर है ना।
जी।
एक तो घर के अंदर का, मतलब एस्तेबान की वो मर्दानगी, वो पितृसत्ता, और उसके सामने क्लारा और बाद की औरतों का वो खामोश सा प्रतिरोध, उनकी अपनी ताकत, हिंसा और प्यार की टक्कर। और दूसरा संघर्ष घर के बाहर का है, देश का, पुरानी दमनकारी सोच, सामाजिक अन्याय और उसके खिलाफ बदलाव की, न्याय की लड़ाई।
बिल्कुल सही।
उपन्यास ये सवाल पूछता है कि क्या नफरत और बदले का ये चक्कर, जो परिवार और देश दोनों को बर्बाद करता है, क्या ये टूट सकता है? क्या यादें, कहानियां, माफी, ये जख्म भर सकते हैं?
गहरे सवाल है।
कहानी की शुरुआत में हम डेल वैले परिवार से मिलते हैं, क्लारा के माँ बाप, उसकी खूबसूरत हरे बालों वाली बहन रोजा।
हाँ, रोजा एस्तेबान की पहली मंगेतर।
और नन्नी क्लारा, जो थोड़ी अजीब है, भविष्य बताती है। और हाँ, जवान एस्तेबान ट्रूदा, जिसके दिल में बस पैसा कमाने और रोजा को पाने का जुनून है।
कहानी शुरू ही होती है एक अजीब भविष्यवाणी और त्रासदी से। छोटी क्लारा खेल में ही कह देती है कि घर में किसी की मौत होने वाली है।
अरे,
और जल्द ही उसकी बहन रोजा, वो हरे बालों वाली जिससे एस्तेबान की सगाई हुई थी, गलती से जहर पी लेती है। वो जहर असल में उसके पिता के लिए रखा गया था।
ओह, कितना दुखद।
एस्तेबान तो टूट ही जाता है, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाता है पैसा कमाने, और क्लारा रोजा की मौत और अपनी भविष्यवाणी के बोझ से 9 साल के लिए चुप हो जाती है, बिल्कुल मौन।
9 साल?
हाँ।
और इसी बीच एक बड़ा अजीब सा विशाल कुत्ता घर में आता है, बर्राबास, जैसे आने वाले तूफान का संकेत।
ये क्लारा का मौन, ये अपने आप में बड़ी बात है। बाहरी दुनिया से कटकर शायद उसकी अंदर की दुनिया और मजबूत हो जाती है।
उसका पहला प्रतिरोध है ये, बिना कुछ कहे।
बिल्कुल। कई साल बाद एस्तेबान अमीर बनकर लौटता है और उसे पता चलता है कि क्लारा ने बोलना शुरू कर दिया है।
क्यों?
क्योंकि उसने भविष्यवाणी की थी कि एस्तेबान उससे शादी करने के लिए पूछेगा।
क्या बात है।
और उनकी शादी हो जाती है। एस्तेबान अपनी पुरानी वीरान पड़ी जमीन खरीदता है ट्रेस मारियास, और अपनी जबरदस्त मेहनत और हाँ किसानों के भयानक शोषण से उसे एक कामयाब एस्टेट बना देता है।
वो अपनी हुकूमत चलाता है वहाँ।
हाँ, जैसे वो सबका मालिक हो।
और यहीं एस्तेबान और क्लारा का फर्क साफ दिखता है। एस्तेबान जहाँ ताकत दिखाता है, क्लारा वहाँ ट्रेस मारियास पर दया और इंसानियत लाती है। स्कूल खोलना, मजदूरों से अच्छा बर्ताव करना।
जी हाँ, ये टकराव शुरू से ही है, पितृसत्ता बना मात्र सत्ता।
बिल्कुल।
ट्रेस मारियास में ही एस्तेबान एक और भयानक काम करता है। एक जवान किसान लड़की पांचा गार्सिया का बलात्कार, इससे एक नाजायज बच्चा पैदा होता है जो आगे चलकर एस्तेबान गार्सिया के रूप में बदला लेने लौटेगा।
अच्छा, ये बदले का बीज वहीं बो दिया गया।
हाँ, शहर में क्लारा उनके कोने वाले बड़े घर की जान बन जाती है। वो घर एक आध्यात्मिक अड्डा बन जाता है। आत्माएं, भविष्यवाणियां, यहीं उनके बच्चे होते हैं, बेटी ब्लैंका और जुड़वां बेटे जैमे और निकोलस।
और एस्तेबान की बहन फेरुला भी है।
हाँ, फेरुला, जिसका क्लारा से एक अजीब गहरा लगाव है। एस्तेबान को यह बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे घर से निकाल देता है। बाद में जब एस्तेबान गुस्से में क्लारा पर हाथ उठाता है तो क्लारा उससे बात करना बंद कर देती है, हमेशा के लिए। ये उसका दूसरा मौन प्रतिरोध है। और मरने के बाद फेरुला की आत्मा क्लारा से मिलने आती है।
ये दिखाता है कि कैसे निजी रिश्ते भी सत्ता के खेल से बच नहीं पाते। एस्तेबान का कंट्रोल और क्लारा का प्रतिरोध, ये आने वाले बड़े राजनीतिक संघर्षों की आहट जैसे हैं।
अब कहानी आती है अगली पीढ़ी पर। ब्लांका एस्तेबान और क्लारा की बेटी, उसे ट्रेस मारियास के ही एक मजदूर के बेटे पेड्रो टर्सेरो गार्सिया से प्यार हो जाता है।
ओ, ये तो वर्जित प्रेम हुआ, जमींदार की बेटी और मजदूर का बेटा।
बिल्कुल, सामाजिक दीवारें तोड़ने वाला प्यार, छिप छिप कर मिलते हैं। लेकिन जब एस्तेबान को पता चलता है
तब तो कहर बरपा होगा।
हाँ, वो ब्लांका को पीटता है और पेड्रो की उंगलियां काट देता है ताकि वो गिटार ना बजा सके।
अरे बाप रे, ये तो सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, ये वर्ग संघर्ष की हिंसा है, उसकी कला छीन ली।
हाँ, एस्तेबान ब्लांका को दूर भेज देता है, पर प्यार खत्म नहीं होता, खतों से जिंदा रहता है। ब्लांका लौटती है, रिश्ता फिर शुरू होता है और वो गर्भवती हो जाती है।
फिर
बदनामी से बचने के लिए एस्तेबान उसकी शादी एक फ्रेंच काउंट जीन डी सतिग्नी से करा देता है, जो अंदर से विकृत निकलता है। ब्लांका जल्द ही उसकी असलियत जान जाती है और अपनी बेटी आल्बा के साथ वापस घर आ जाती है। शादी तो टूट जाती है, पर ब्लांका और पेड्रो का प्यार जिंदगी भर चलता है।
ब्लांका का किरदार यहाँ कितना अहम है। वो जैसे दो दुनियाओं के बीच का पुल है, अपने पिता की दुनिया और अपने प्रेमी की। उसका जीवन ही पितृसत्ता के खिलाफ एक संघर्ष है, और उसका प्यार, वो टिका रहता है।
हाँ, और अब कहानी का केंद्र बनती है आल्बा, ब्लांका और पेड्रो टर्सेरो की बेटी। आल्बा जैसे जैसे बड़ी होती है, ट्रूबा परिवार देश के बढ़ते राजनीतिक बंटवारे का आईना बन जाता है।
एस्तेबान तो अब बड़ा नेता बन गया होगा, है ना, रूढ़ीवादी।
हाँ, शक्तिशाली सीनेटर, समाजवाद से सख्त नफरत। उसके अपने बेटे भी बटे हुए हैं, जैमे जो डॉक्टर है, गरीबों का इलाज करता है, चुपचाप समाजवादियों का समर्थक है, और निकोलस, वो अपनी ही आध्यात्मिक दुनिया में मगन है।
और क्लारा का घर,
वो अब भी वैसा ही है, रहस्यवादी, कलाकार और हाँ आत्माएं, घर भरा रहता है इन सबसे।
परिवार में ही देश का विभाजन दिख रहा है।
बिल्कुल, देश में भी तनाव बढ़ रहा है। अल्बा यूनिवर्सिटी में है, क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित है, उसे मिगुएल नाम के एक वामपंथी नेता से प्यार हो जाता है, माहौल गरमा रहा है,
और फिर तूफान आता है।
हाँ, समाजवादी उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं, उपन्यास में उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति कहा गया है। एस्तेबान और इसके जैसे लोग बौखला जाते हैं।
एस्तेबान साजिश करता है।
हाँ, सक्रिय रूप से, नई सरकार को गिराने के लिए। दक्षिणपंथी ताकतों CIA के मदद का भी जिक्र है। देश में उम्मीद का एक छोटा सा दौर आता है, पर मुश्किलें भी हैं, और फिर हिंसक सैन्य तख्तापलट, बिल्कुल चिली 1973 जैसा। राष्ट्रपति भवन पर बमबारी, राष्ट्रपति की हत्या।
ये तो सीधा आयंदे के अपने जीवन का अनुभव है। व्यक्तिगत ही राजनीतिक है वाली बात यहाँ एकदम सामने आ जाती है। देश की त्रासदी परिवार की त्रासदी बन जाती है।
बिल्कुल, इसी उथल पुथल में जैमे, वो डॉक्टर बेटा, उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो अस्पताल छोड़कर भागता नहीं। उसे भयानक यातनाएं देकर मार दिया जाता है।
ओह नो।
क्लारा, जो पहले ही कमजोर थी, अपने प्यारे बेटे की मौत और इस सब में अपने पति के रोल के एहसास से टूट जाती है। वो फैसला करती है कि अब उसका वक्त आ गया है। वो शांति से अपनी जान दे देती है, अल्बा से वादा करके कि वो लौटेगी।
क्लारा की मौत, जैसे उस घर की आत्मा चली गई, एक युग का अंत।
तानाशाही का दौर शुरू होता है, सेंसरशिप,
लोग गायब हो रहे हैं, यातना, ये सब आम हो जाता है। ब्लांका अपने प्रेमी पेड्रो को देश से भागने में मदद करती है। अल्बा, जिसका प्रेमी मिगुएल भी छिप गया है, वो भी प्रतिरोध में शामिल लोगों की मदद करती है, पर उसे धोखा मिलता है और उसे पकड़ लिया जाता है।
अल्बा को भी?
हाँ, उसे एक गुप्त यातना शिविर में ले जाया जाता है, बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है, और उसका मुख्य टॉर्चर करने वाला कर्नल एस्तेबान गार्सिया।
वही एस्तेबान ट्रूबा का नाजायज पोता?
जी हाँ, पांचा गार्सिया के बलात्कार का नतीजा, नफरत और बदले का चक्र अपना सबसे घिनौना रूप दिखाता है यहाँ।
ये कहानी का सबसे काला हिस्सा है एस्तेबान ट्रूबा के एक हिंसा, पीजियों बाद लौटकर उसी के परिवार को डस लेती है। लेकिन अल्बा टूटती नहीं है ना?
नहीं, वो नहीं टूटती। उन भयानक हालातों में उसे अपनी दादी क्लारा की आत्मा सहारा देती है। क्लारा उसे सिखाती है कि कैसे वो दिमागी तौर पर बच सकती है, कैसे वो सब कुछ अपने मन में दर्ज कर सकती है भविष्य के लिए।
वो लिखती है मन में?
हाँ, कहानी बुनती है ताकि वो पागल ना हो जाए।
और अंत में कुछ बदलता है?
हाँ, एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। बूढ़ा एस्तेबान ट्रूबा, जो अब अपराध बोध से भरा है, अपनी पोती अल्बा को बचाने के लिए अपने सारे असर का इस्तेमाल करता है। वो उसे रिहा करवाता है, घर लाता है, हाँ, और वो अल्बा की देखभाल करता है ऐसी कोमलता से जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई। मरने से पहले वो अल्बा के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करता है और फिर अल्बा का हाथ थामे शांति से मर जाता है। कहते हैं क्लारा की आत्मा उसे लेने आती है।
प्रायश्चित?
अकेली अल्बा, गर्भवती, उसे घर में दादी क्लारा की पुरानी डायरियां मिलती हैं। क्लारा की आत्मा के कहने पर वो बदला लेने के बजाय लिखने का रास्ता चुनती है। वो अपने परिवार की कहानी लिखने का फैसला करती है, ट्रूबा और डेल डेले परिवार की कहानी, जो उसके देश की भी कहानी है।
और यही अल्बा का यही फैसला उपन्यास का दिल है, है ना? क्लारा की यादों और अपनी कहानी को लिखकर वो सिर्फ अतीत को नहीं समझ रही, वो उस नफरत के चक्कर को तोड़ने की कोशिश कर रही है।
हाँ, लिखना ही उसका प्रतिरोध बन जाता है, उसका इलाज। ये हमें उपन्यास की शुरुआत पर ले जाता है। आइंदे का अपने दादाजी को लिखा वो खत, कहानी कहना यहाँ जिंदा रहने का, अर्थ ढूंढने का जरिया है। चलिए अब जरा मुख्य विषयों पर और बात करें। पहला तो यही स्मृति और कहानी कहने की ताकत, क्लारा का लिखना, फिर अल्बा का लिखना, ये सिर्फ यादें नहीं है।
नहीं, ये इतिहास को दर्ज करने का एक तरीका है, वो इतिहास जो सरकारी किताबों में नहीं मिलता। ये अपनी सच्चाई बयान करना है, डर पर जीत पाना है।
बिल्कुल। और दूसरा वो मुद्दा, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है।
जी,
ट्रूबा परिवार की कहानी देश की कहानी से अलग नहीं है।
हाँ, उनके आपसी रिश्ते, झगड़े, प्यार, सब पर देश के हालात का असर है। इस्तेबान का घर में जुल्म करना और बाहर तानाशाही का जुल्म, ये जुड़े हुए हैं।
जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों।
हाँ।
और फिर वो हिंसा और माफी का चक्र, इस्तेबान गार्सिया का बदला लेना,
वो दिखाता है कि नफरत कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है।
पर अल्बा का फैसला, लिखना, समझना, वो इस चक्र को तोड़ने की उम्मीद देता है। वो कहती है ना कि उसका काम नफरत फैलाना नहीं,
हाँ, बल्कि ये जीवन के चमत्कारों की लिस्ट में कुछ और जोड़ना है। बहुत शक्तिशाली बात है ये। और इस पूरी कहानी में औरतों की ताकत, उनका लचीलापन, क्लारा, ब्लांका, अल्बा, ये कमाल है।
हाँ, वो सीधे नहीं लड़ती शायद, पर उनकी अपनी अंदरूनी ताकत है, प्यार है, सहनशीलता है।
वही तो, परिवार को जोड़े रखती हैं, वो घर की नींव हैं, उम्मीद बनाए रखती हैं।
और वो जादुई यथार्थवाद, क्लारा की शक्तियाँ, आत्माएं, ये सिर्फ स्टाइल नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जैसे दुनिया को देखने का एक और नजरिया है, इस्तेबान की वो कठोर भौतिकवादी सोच के खिलाफ, तानाशाही की बेतुकी क्रूरता के खिलाफ, ये मुश्किल वक्त में सहारा भी बनता है,
एक तरह का प्रतिरोध।
हाँ।
और हाँ, सामाजिक वर्ग का मुद्दा, न्याय का सवाल, इस्तेबान और पेड्रो टर्सेरो का संघर्ष, वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है,
वो जमींदार और मजदूर वर्ग की लड़ाई है।
बिल्कुल। उपन्यास पुरानी व्यवस्था के अन्याय को दिखाता है और बदलाव की मांग के साथ खड़ा नजर आता है। क्रांति और उसके दमन को भी बड़ी संवेदनशीलता से दिखाया गया है। कहानी कहने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। कई आवाजें हैं, अल्बा मुख्य कथावाचक है, क्लारा की डायरियों की मदद से।
हाँ, और बीच बीच में इस्तेबान की आवाज भी आती है, इटैलिक्स में, अपना पक्ष रखता हुआ, गुस्से और पछतावे के साथ।
इससे इतिहास का कोई एक सच नहीं रहता, अलग अलग नजरिए सामने आते हैं।
जी।
और लेखिका ने कई तकनीकें इस्तेमाल की हैं, जादुई यथार्थवाद तो है ही, पूर्वाभास, क्लारा की भविष्यवाणियां।
हाँ, वो हमें तैयार करती हैं।
प्रतीकवाद भी है, वो कोने वाला बड़ा घर त्रेस मारियास और किरदारों के अंग कटना, पेद्रो की उंगलियां, जैमे के हाथ, ये सब गहरे जख्म दिखाते हैं।
और पूरी कहानी एक रूपक की तरह है, चिली के इतिहास का रूपक।
बिल्कुल।
और भावनात्मक रूप से ये किताब आपको हिला देती है। इसमें भयानक क्रूरता है, अन्याय है, दिल टूटता है पढ़ते हुए।
हाँ, घरेलू हिंसा, राजनीतिक यातना,
लेकिन साथ ही इंसान की हिम्मत, प्यार की ताकत, वो भी दिखती है जो आपको हौसला देती है। क्लारा की जादुई दुनिया से लेकर अल्बा के यातना शिविर तक का सफर यह आपको हंसाता भी है, रुलाता भी है और सोचने पर मजबूर तो करता ही है।
बिल्कुल। और अंत में जो एहसास रहता है वो शायद एक कड़वी मीठे उम्मीद का है। इतनी बर्बादी के बाद भी ये किताब नाउम्मीद नहीं छोड़ती।
हाँ, ब्लांका और पेड्रो का प्यार, औरतों की वो अंदरूनी शक्ति और अल्बा का लिखने का फैसला, ये दिखाते हैं कि अंधेरे में भी रोशनी की गुंजाइश है।
सवाल बचते हैं, क्या देश और परिवार इन जख्मों से उभर सकते हैं? क्या नफरत का ये चक्र टूटेगा?
जैसा अल्बा सोचती है कैद में, उसे जिंदा रखने वाली चीज सिर्फ उसकी अपनी हिम्मत नहीं थी, बल्कि उन सब लोगों का प्यार था जो उसके अपने थे, और उनकी यादें।
ये कहानी इतिहास को सिर्फ घटनाओं के तौर पर नहीं देखती, बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों, प्यार, दर्द और जादू के ताने बाने की तरह देखती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल किताबों या स्मारकों में नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों और दिलों में लिखा और जिया जाता है।
और सबसे अंधेरे वक्त में भी यादें और कहानियां हमें रास्ता दिखा सकती हैं, और शायद मुक्ति भी।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।